नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने कहा कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच राज्य सरकार और 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल देर शाम औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई और कहा कि जब तक लिखित में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर मिजोरम में छात्र संगठन मिजो ज़िरलाई पॉल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि वो सोमवार को मिजोरम लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देगा। उसकी मांग है कि आयोग में जरूरी सुधार किए जाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बन सके। भारतीय ग्रैंडमास्टर R प्रज्ञानंद ने अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने 23.5 अंक हासिल कर ये जीत एक राउंड पहले ही पक्की कर ली। उज्बेकिस्तान के जोकिर सिंदराव दूसरे और अमेरिका के वेस्ली सो तीसरे स्थान पर रहे। और कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर एक खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।